cocaína.
شو هواية كمان؟
بيكوش تكينا
كود جوتا جاو
بيكوش نا كود تي آخو
کوئی گال کرو نا جی
لکھو تے ہوا ہے کہو نہ کہو او کوشش تا کھو
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے کچھ تو کہیے. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز, انجینئر کرٹس بائنم, پروڈیوسر ہمارے ارسلان شریف ہیں. مہمان ہمارے یقیناً آپ سب کے دل کو بڑا بھائیں گے اور آپ سب ان کو براہ راست یعنی بالواسطہ یا بلاواسطہ ضرور جانتے ہیں, تو ایک جھلک سنتے ہیں ان کی آواز کی, دیکھیں آپ پہچانتے ہیں کہ نہیں.
اوپر والے کا دیا ہوا سب کچھ ہے, شہرت ہے, دولت, خوبصورت لگے گی لوگوں کو فلم, مزہ آئے گا. ہائے, آئی ایم انیس بزمی. اوپر والے کا دیا ہوا سب کچھ ہے, شہرت ہے, دولت ہے, عزت ہے, نو انٹری ہے, ویلکم ہے, سینگ از کنگ ہے. ایک بار میں پھر ریڈی ہوں آپ لوگوں کا ویلکم بیک کرنے کے لیے.
تو سامین, ویسے تو راز افشا ہی ہو گیا کہ انیس صاحب نے شروع میں کہہ دیا کہ میں انیس بزمی ہوں. السلام علیکم انیس صاحب. انیس صاحب
جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پہلے تو بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بہت سارے سننے والے جو ہیں آپ کو جانتے ہوں, کیونکہ فلموں کے شوقین لوگ بہت ہیں ہمارے یہاں, اور فیس بک پہ بھی آپ کے لیے بہت سے سوال آتے ہیں, بہت سی باتیں ہیں. لیکن چلیے شروع کرتے ہیں پہلے آپ سے. آپ کا جو میں نے یہ شروع میں ایک کلپ دیا تھا, یہ آپ کا ایک انٹرویو تھا. آپ کا میں جو بھی انٹرویو میں نے سنا یا دیکھا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ ایک بڑے مطلب قانع آدمی ہیں. آپ میں ایک ہوتی ہے نا بھاگ دوڑ, بامبے کی زندگی میں ہم سمجھتے ہیں کہ آدمی بھاگتا دوڑتا رہتا ہے, تو آپ میں ایسا لگتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے. فلمیں بھی آپ یہ نہیں چاہتے کہ ایک ساتھ بہت سی بنائیں, کہانیاں بھی بہت سی لکھیں, تو یہ ٹھہراؤ اور قناعت مجھے ہمیشہ یقین ہوتا ہے کہ آدمی کے خاندان سے آتا ہے. تو شروع کرتے ہیں, کہاں سے آپ کی زندگی کا آغاز ہوا؟
ایکچولی یہ ساری جو دین میں کہوں گا یہ میرے والد صاحب کی ہیں. میرے والد صاحب جو ہیں ان کا نام عبد الحمید نیرنگ بزمی, شاعر ہیں, شاعر تھے. تو میں شروع سے جب سے میں شاید پانچویں یا چھٹی جماعت میں تھا تو ان کے ساتھ ہی ان کی شاعری جو ہے وہ لکھتا رہتا تھا اردو میں, تبھی سے وہاں سے شوق آ گیا. تو ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی مطلب کم عمری میں جو ایک میری شخصیت تھی وہ یہ ہے کہ سارے بڑے بڑے شاعروں جو شاعر ہیں ان کے بیچ میں رہا ہوں. تو ایک بچپنا جو ہے وہ بہت زیادہ بچپن میں بھی نہیں تھا مجھے.
اچھا, وہ کیسے؟
تاکہ یہ سارے جو بڑے جتنے شاعر ہیں سارے بڑی عمر کے تھے, 40 سال 45 سال 50 سال, اور اباؤٹ 13 اور 14 تب سے میں ان کے بیچ بیٹھتا رہا ہوں میرے والد صاحب کی وجہ سے. تو مجھے شاعری کا شوق جو ہے بہت پہلے سے شروع ہو گیا. تو جب میں 8th یا 9th میں تھا تو میں نے سب دیوان جو ہے دیوان غالب اور اقبال اور میر اور جوش یہ سب میں نے 8th یا 9th جماعت میں جب میں تھا تب میں نے پڑھ لیے تھے.
اچھا, میں انیس صاحب بلکہ آپ ہیں خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ, میں ایک بات پوچھوں گی. میں جب بھی, اور یہ صرف میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہی, پاکستان میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو گجراتی بولنے والی ہمارے بھائی بہن ہیں, میں نے دیکھا کہ ان میں بڑا اردو شاعری کے لیے ایک محبت, اس کا شوق, پھر ان کو ڈرامے کا, آرٹس کا, ان سب چیزوں کا بہت شوق ہے. تو یہ زبان سے محبت یہ ایک عام چیز ہے گجرات میں, اس کی کیا وجہ ہے تھوڑا سا اگر آپ مجھے بتائیں؟
مجھے اس بارے میں زیادہ ایماندار سے بتاؤں کہ زیادہ علم نہیں ہے, لیکن ہاں میں خود گجراتی ہوں, میرے والد جو ہیں وہ گجراتی, گجرات سے میں بلانگ کرتا ہوں, اور میرا تو جو اردو سے اور شاعری سے جو شوق شروع ہوا اس لیے کہ میں نے اردو میں ہی تعلیم حاصل کی, اور بیکاز آف مائی فادر, میرے ابا کی وجہ سے شاعری سے بچپن سے ہی میرا ایک تعلق ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے دھیرے دھیرے شوق ہوتا گیا. لیکن یہ صحیح بات ہے کہ جب میں گجرات جاتا ہوں تو وہاں پہ کافی لوگ ایسے مجھے ملے جنہیں اس زبان سے ایک عجیب سا لگاؤ, ایک عجیب سا پیار ہے
جی.
اور وہ دیکھ کر اور وہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے.
اور میں دیکھتی ہوں نا کہ جو ریالٹی شوز ہوتے ہیں اس میں جو میوزک کے پروگرام ہوتے ہیں تو جو گجرات سے بچے آتے ہیں वो ऐसी ऐसी मुश्किल गजलें इतने सही तलफ्फुज के साथ, और राजस्थान इन दो जगहों से, कि मुझे हैरत होती है कि इन बच्चों ने, जबकि मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि इंडिया में बहुत से लफ्ज अब जो नई जनरेशन है नहीं सही तरह अदा कर सकती,
नहीं
जैसे
जा
जीम, जीरा, जीरा जे नहीं कहते, जी जीम कहते हैं,
जी
मगर इन दोनों इलाकों के बच्चे मैं देखती हूँ बहुत अच्छी तरह से गजलें वो जो है पढ़ते हैं और गाते हैं। अच्छा, तो आपके कोई बहन भाई नहीं थे या आप इकलौते बच्चे हैं आप?
नहीं, मेरे मेरे नहीं नहीं मेरे तो अपने दो बहनें हैं और दो और भाई हैं,
अच्छा,
लेकिन ये कह सकते हैं कि आप पांचों में से जो ज्यादा शौक शायरी का रहा और फिल्मों के तरफ जो मैं गया वो सिर्फ मेरे घर में, मेरे पूरे खानदान में मैं अकेला ही हूँ।
अच्छा, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा कि क्यों आप ज्यादातर बड़ों में उठते बैठते रहे, तो ये आपकी जाती जो दिलचस्पी थी शायरी में इसकी वजह से हुआ, घर में वरना बच्चे मौजूद थे जिनके साथ आप वक्त गुजार सकते थे।
जी।
अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं शुक्रिया अदा कर दूं अपने एक प्रोग्राम के शरीक का, जहां ज़ेब आवान उनका नाम है, कराची से हैं और
जी
बड़े मद्दा हैं आपके, ज़बरदस्त फ़ैन हैं। उनके बारे में हम ज़्यादा बात आज नहीं करेंगे क्योंकि इंशाल्लाह आप
जी
हमारे दूसरे प्रोग्राम में आ रहे हैं मेरी कहानी में, जो जहां ज़ेब आवान
जी
की कहानी हम उसमें सुनेंगे और कुछ आपसे भी सुनेंगे। तो सिर्फ मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये टेलीफोन नंबर हमें दिया।
नहीं, मैं उनका खुद भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जहांजेब का, जिसकी वजह से आपसे आज गुफ्तगू करने का मुझे मौका मिला। बहुत ही प्यारा बच्चा है और वो जब आया तो मुझे ऐसा लगा जब पाकिस्तान की बातें उसने और वहाँ के सारे लोगों की बातें भी बताई तो मेरा दिल इतना खुश हुआ। मैंने बहुत उसको दुआएं दी, बहुत प्यार दिया और इंशाल्लाह अपनी आने वाली फिल्मों में उन्हें काम भी देना चाहूंगा।
लीजिए, आपने तो राजी अफशा कर दिया। मैं सोच रही थी ये हम पर्दा हटाएंगे इस रास्ते से मेरी कहानी, लेकिन कोई
जी
बात नहीं,
नहीं उस पर और बात
उस पर और बात
करेंगे
करेंगे, ठीक है। अच्छा,
हम।
तो जहाँ से आपको, इसलिए हम आज प्रोग्राम में नहीं ले रहे, उनको इंशाल्लाह हम
जी
जुमेरात के रोज देंगे। तो
जी
आपने अब्दुल हमीद बज़मी साहब की शायरी का जिक्र
जी
किया, और कुछ याद है आपको या मैं फरमाइश ना करूं एक आध शेर की?
नहीं, मेरे वालिद साहब ने तो काफी गजलें और नज़में और सब लिखी, तो अभी फिलहाल मतलब ये है कि जैसे मैं एक उनका एक ये कह सकता हूँ कि एक चीज दो चार शेर है वो आपको मैं सुना सकता हूँ कि उन्होंने एक उनवान लिखा था रखासा, तो उसपे उन्होंने कहा था कि प्यार समझे न कोई प्यार का बंधन समझे, प्यार समझे न कोई प्यार का बंधन समझे, नाजो अंदाज ही को रिस्क का साधन समझे।
वाह वाह वाह।
और हमने टीका भी लगाया तो सवरने के लिए, सच है सिंदूर की कीमत तो सुहागन समझे।
वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो मैं
और एक और
जी 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 प्लीज इरशाद
जी। संगे दहलीजे दुकान देख कर पहरो रोए, आज हम मानिए घर अजमत आंगन समझे।
वाह वाह वाह
जी।
और कुछ
नहीं, बस ये आपको मैंने एक मतलब
नमूने
बता
के तौर
दिया कि
पे
ये इस तरह के अशार कहते थे, और वाले साहब जो है मेरे बड़े जबरदस्त शायर थे,
अच्छा,
बहुत से नज़्में लिखी उन्होंने।
अच्छा, मैं सुन आपकी फिल्में मैंने भी बहुत सी देखी हैं बड़े शौक से,
जी
और आपकी
जी
फिल्मों के बड़े पॉपुलर गाने में एक गाना सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले सुनते
जी
हैं गाना
प्लीज।
महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे।
ये गाना मैंने जो सुनवाया आपको, मैं ये पूछना चाहती थी, मुझे मालूम है ये बहुत ही पॉपुलर गाना है, बच्चे और नौजवान गाते फिरते थे इसको, लेकिन आपके वालिद की जनरेशन जो है वो इन गानों के लिए क्या सोचती है और क्या कहती है आपके
उनके लिए तो ये लगी होगी कि अनीस की फिल्मों में इस तरह के गाने कैसे आ सकते हैं, ये अब्दुल नैरंग बज़मी के बेटे हैं। मुझे ये लगता है कि मैं जो फिल्म बनाता हूँ वो चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान में भी चले और वो लंदन में भी चले, चाइना में भी चले, लुधियाना में भी चले, तो मुझे एक बहुत ही वसी ऑडियंस के बारे में सोचना पड़ता है। तो आज जो यूथ है, यूथ की और जो आज की जो जनरेशन है वो इस तरह के गाने बहुत पसंद करती है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत आसान जबान के अंदर इसमें भी शायरी थी, एक बहुत ही खूबसूरत थॉट था इस गाने में
जी।
तो
जी।
मुझे ये गाने बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया, शूट किया और लोगों को बहुत पसंद आया। ये फिल्म जो बहुत बड़ी हिट हुई है इसमें इस गाने का भी बहुत बड़ा हिस्सा था।
बिल्कुल सही आपने कहा, ये तो मैंने पहले कहा कि ये बहुत पसंदीदा गाना है, लेकिन जाहिर है कि जनरेशन मुख्तलिफ हैं और उनके शौक भी मुख्तलिफ हैं। अच्छा, तो आपके जो गुरु हैं फिल्म की दुनिया में वो बहुत बड़े फनकार हैं और डायरेक्टर भी बहुत बड़े हैं, राज कपूर साहब, आपने उनके साथ अपने काम का आगाज किया, तो वहीं से हम शुरू करते हैं, तो कुछ बताइए।
वहीं सीखा था मैंने काम, मैं बहुत ही मतलब यंग था उस वक्त, आई थिंक आई वॉज 16 मेरी एज थी, और मुझे ये इतना बड़ा मौका मिला उनके साथ चार साल गुजारने का। मैंने एक फिल्म थी प्रेम रोग, उसमें उनको असिस्ट किया था, और मुझे लगता है कि आज मैं जिस जगह भी पहुंचा हूं उसमें उनकी दुआओं का और उनके साथ रहने का बहुत असर है। इसलिए कि मुझे लगता है कि आप 5 साल कुछ पढ़ते रहिए और 5 दिन किसी उस्ताद के साथ रहिए, वो एक ही लड़की को भी थोड़ा बहुत सीखा है, मुझे लगता है उसका मैं सारा जो गहरा जो है वो देना चाहता हूँ राज साहब को। राज साहब के साथ रहने की वजह से मुझे समझ में आया कि ये फिल्म क्या होती है, इसे कैसे बचाना चाहिए, और उनका जो पैशन था वो मुझ में कहीं बहुत ही चाहिए, लेकिन वो जो पैशन है वो उनकी वजह से आया।
अच्छा, तो कोई ऐसी बात जो उनसे आपने सीखी है और जो आज तक आप उस पर अमल कर रहे हैं राज कपूर साहब की डायरेक्शन
का, उनका मैंने देखा कि काम का जो अंदाज था, वो जब फिल्म बनाते थे तो वो मुझे लगता है कि फिल्म जीते थे, वो उठना बैठना सोना जागना खाना वो हर चीज वक्त वो सिर्फ फिल्म का सोचते रहते थे, और इसीलिए इतनी खूबसूरत फिल्में उन्होंने बनाई। और यही जो मेहनत है, देखिए काबिले जो है वो ऊपर वाला देता है, लेकिन मेहनत जो है वो आपको करनी होती है। तो जो भी ऊपर वाले ने मुझे काबिलियत दी मेरे एक राइटिंग दी थी मेरे वालिद साहब की वजह से, मैंने बहुत शायरों को पढ़ा भी, तो मुझे एक राइटिंग का शौक भी था, तो मैंने राइटिंग भी बहुत की, लेकिन डायरेक्शन है मैंने उनसे सीखी, और जो एक पैशन है और जो ईमानदारी से मेहनत और पूरी लगन से काम करना है वो आज तक जो मैं हर फिल्म में करता हूँ वो मुझे लगता है मैंने राज साहब से सीखा।
मुझे जो आपकी फिल्मों में एक बात बहुत ही अच्छी लगती है ना, मुझे काफ़ी नापसंद है मार धाड़ से पुर फिल्में, बहुत बुरी लगती है मुझे, लेकिन आपकी जो मैं फिल्म देखती हूँ ना उसमें मार धाड़ भी है, डॉन भी चले आ रहे हैं, मगर ऐसे मस्खरे किस्म के गुंडे हैं आपके सारे, मतलब मुझे बहुत ही पसंद आते हैं, और मैं सोचती हूँ कि मतलब ये एक हमें एक ज़ाहिर है ये रियलिटी है दुनिया में क्राइम्स और सारी ये जराइम की दुनिया, तो एक हकीकत तो है, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं। एक एक डायलॉग सुनते हैं हम आपकी फिल्म वेलकम बैक से गालबन है, उससे मुझे मैं बताऊंगी आपको कि मुझे बहुत ही पसंद आया।
ए बल्लू बता 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 इसे बता, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है बता इसे।
मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और
बस, 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 बस हो गया। अब बता क्या करूँ तेरा।
मैंने तो सोचा कि दो दो गुड न्यूज मैं आपको दूंगा, तो आप मेरी
तो ये इस तरह के जो आपके डायलॉग हैं, और फिर मैं ये भी देखती हूँ कि आपकी एक टीम है, कुछ आर्टिस्ट हैं जो हमेशा आपकी मुख्तलिफ फिल्मों में मुझे नज़र आते हैं, तो ये एक नेचुरल भी है, ये हमारे रेडियो हो या टेलीविज़न हो, मीडिया के हमेशा एक टीम बन जाती है जिनका एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा गुजारा होता है, तो कौन से खास खास वो कौन लोग हैं जिनके साथ आप हमेशा फिल्म बनाना चाहते हैं?
मतलब ये जो अपने जैसे नाना पाटेकर हैं, अनिल कपूर साहब हैं, अक्षय हैं, सलमान भाई हैं, अजय देवगन हैं, और इनके साथ मैंने काफी काम किया, और जो वेलकम में जो पीछे नाना जी और रानी जी के साथ जो लोग खड़े हैं, मुश्ताक और अपना भरत और हमारा ये क्या नाम ईरानी, ये सारे जो लोग हैं ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इनको इतना एतमाद भी मुझ पर, इसलिए कि उस वक्त जब मैं फिल्म शुरू किया था मैंने रोल खास नहीं थे, बट उनको ये एक एहसास था कि नहीं अनिल भाई बहुत प्यार करते हैं और जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ये करेंगे, उस उम्मीद पे उन्होंने काम करना शुरू किया। हालांकि ये इतने अच्छे खुद एक्टर्स हैं कि इन्हें काफी फिल्मों में बड़े बड़े रोल करते हैं, लेकिन ये सिर्फ मेरी वजह से कि ठीक है भाई हम लोग पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन अनित भाई ये फिल्म में हम काम करेंगे क्योंकि हमें ये उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा करवाएंगे। और देखिए कि वो उनका प्यार और वो एक दोस्ती होती है और एक विश्वास होता है, जब मैं लिखता गया तो इतने खूबसूरत इन लोगों के रोल हुए कि मुश्ताक भाई आज जहां भी जाते हैं तो उनको ये डायलॉग बिना बोले लोग तो छोड़ते ही नहीं है कि मेरी टांग जो नकली है। तो इस तरह का है कि ये एक दोस्ती हो जाती है, एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है, और जिनके साथ आपने काफी काम किया है वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो मैं काफी कंफर्टेबल फील करता हूँ इन सारे लोगों के साथ काम करना।
अच्छा, और मजे की बात ये है कि जब आपने आगाज किया तो आपने एक्टिंग से आगाज किया अपनी फिल्मी दुनिया का। मैंने गाना निकाला है आपके बचपन का और मैं बड़े देखने की कोशिश करती रही। वैसे मैं ये एक आपको कॉम्प्लीमेंट पेश कर दूं कि आप एक अब भी बड़े हैंडसम आदमी हैं और आपको फिल्मों में किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन उसमें इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे थे कि मुझे पता नहीं लग सका। तो जरा सब गाना सुनते हैं, फिर मुझे बताइए कि इनसे कौन से बच्चे जो हैं वो आप हैं।
मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, आई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले कान, अरे बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती। अरे नहीं यार,
तो इसमें आपका कौन से आप हैं, ताकि हमारे सुनने वाले अगर देखना चाहें आपको इस गाने के बीच में तो देख सकें कि आप कौन
जो
से।
जो गाना है मैंने बरसों बाद सुना और मुझे अपने ये हो गया कुछ 35-40 साल या उससे भी ज्यादा वक्त हो गया होगा, तो मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। मैंने बचपन में एक दो फिल्मों में काम किया था, एक फिल्म थी किताब गुलजार भाई की, एक फिल्म नसीब फिल्म थी महेंद्र साई साहब की, उसमें मैंने शत्रुघ्न सिन्हा साहब का बचपन का रोल अदा किया था। तो वो एक्टिंग जो है बस ये है कि इत्तेफाकन एक आप कह सकते हैं कि मेरा कोई खास पैशन और मेरा कोई खास शौक नहीं था, बट मैंने शुरू किया था काम करना इसलिए मुझे इसी लाइन में आना था। कुछ समझ थी नहीं और कोई आगे पीछे नहीं था, काफी काम किया एज असिस्टेंट एडिटर, फिर मैंने आर्ट डिपार्टमेंट में काम किया, फिर मैंने साउंड रिकॉर्डिंग में काम किया। तो इस तरह के छोटे छोटे काम मैंने एक साल, डेढ़ साल, दो साल, एक साल, डेढ़ साल ऐसे काफी करते गया। फिर मैंने असिस्टेंट राइटर का काम किया, देन असिस्टेंट डायरेक्टर बना। तो मैंने काफी काम करने के बाद मेरे ख्याल से जब मेरी एज रही होगी 16-17 साल, उस वक्त मैंने अपना जहन बनाया कि नहीं मुझे डायरेक्टर बनना है और शायद मैं ये डायरेक्शन बहुत अच्छी कर सकता हूँ।
अच्छा, ये जो हमने गाना लिया था ये गुलजार साहब की फिल्म थी किताब, तो कैसे ये रोल कैसे मिला आपको?
एक्चुअली क्या है कि जो मेरा एक छोटा भाई था उसका नाम है रईस, वो बड़ा ही खूबसूरत बच्चा था, तो मुझे लगता था कि ये बच्चे को जो है फिल्मों में काम करना चाहिए। तो उसकी तस्वीर लेके मैं जो है काफी लोगों से मिलता था, और एक बार जब गुलजार भाई से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि अनीस ये तो बच्चा बहुत छोटा है, तुम करोगे? मैंने कहा कि ठीक है। तो बस ये आप समझिए कि ये किस्मत में लिखा होगा, अल्लाह ने कुछ किया होगा और मेरी तकदीर में होगा, एक डेस्टिनी होगी कि मैंने वो काम शुरू किया और धीरे 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 मेरा शौक बढ़ता गया एक लाइन में, और फिर काफी सालों बाद मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं मैं ये शायद फिल्म लाइन में डायरेक्टर बनने के लिए आया हूँ।
तो
और फिर डायरेक्टर बनने के लिए मैंने काफी फिल्में लिखी एज ए राइटर, तो मैंने आज तक तकरीबन 50-55 फिल्में लिखी हैं। तो वो फिर मैं फिल्में लिखता गया ताकि मैंने बोला एक थोड़ा नाम हो जाए, ताकि लोग जो है डायरेक्टर को मतलब मुझे सीरियसली लें और डायरेक्शन का मौका दें। तो वो मैंने कहा सोचा था कि मैं चार पांच फिल्में लिख के फिर शुरू करूंगा, लेकिन वो चारों पांच बिगनिंग की वो इतनी बड़ी हिट हो गई, वो आंखें थी, वो शोला शबनम, बोल राधा बोल, राजा बाबू, दीवाना मस्ताना अफ्ताना अफ्ताना अफ्ता, सिलसिला जो मैंने सोचा था चार पांच फिल्मों तक महदूद रखूंगा, वो सिलसिला शुरू होता गया और मैं 25-30 फिल्में लिखता चला गया, उसके बाद देन आई स्टार्टेड डायरेक्शन।
मुझे ये सोच के मैं भी मुस्कुरा रही थी कि अनीस जो हैं जेब में लिए फिर रहे थे भाई की तस्वीर, खूबसूरत बच्चे की, मगर आप भी बहुत खूबसूरत बच्चे होंगे, मुझे इसका पूरा यकीन है।
मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, इसीलिए मैं कैमरे के पीछे आ गया कि भाई चलो मैं ये काम बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मैं काम जो है, मुझे लगता है डायरेक्शन का काम जो है और राइटिंग का, ये बड़ा खूबसूरत काम है, इसलिए कि कहते हैं कि जो अगर आपको एक फिल्म को बहुत अच्छी और खूबसूरत बनाना है तो उसके लिए जो तीन चीजों की अशद जरूरत है वो नंबर वन है स्क्रिप्ट, नंबर टू है स्क्रिप्ट और नंबर थ्री है स्क्रिप्ट। तो मुझे लगता है कि मैं राइटर बहुत अच्छा हूँ, मैं स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लिखता हूँ, मैं स्टोरी बहुत अच्छी लिखता हूँ, मैं डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखता हूँ। तो मैंने कहा कि जिस काम में मैं ऐसा समझता हूँ कि मुझे बहुत मजा देता है, ये जो काम मुझे बोझ नहीं लगता है और मुझे लगता है कि हाँ भाई ये मैं कर सकता हूँ, तो मैंने अपने आप को फिर उस तरफ लेके चला गया।
अच्छा, वैसे तो ये एक आइडियल सूरत हाल है कि आप कहानी अपनी पसंद की कहानी लिखें, अपने पसंद के डायलॉग लिखें, हर चीज आपको कोई जरूरत ही नहीं काट छांट की, लेकिन मुश्किल भी बहुत है, तो किस तरह आप कोप करते हैं एक महदूद वक्त में जब आप फिल्म बना रहे होते हैं, कितना अर्सा लगता है तमाम चीजों को साथ करने?
मुझे लगता है कि फिल्म में जो फिल्में हम बनाते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है वो राइटिंग, क्योंकि जब इंसान अकेले कमरे में तन्हा कोरे कागज को लेके बैठा होता है तो उससे ज्यादा भयानक, उससे ज्यादा खौफनाक कोई चीज नहीं होती। ये ऐसा होता है कि आप एक टनल में जा रहे हैं अंधेरे में और आपको ये पता नहीं कि ये टनल का दूसरा हिस्सा कहाँ है, तो वो नेचुरली आदमी अंदर जाने से डरता है। तो वो हर फिल्म लिखने के वक्त मुझे बहुत डर लगता है, आज भी, आज माशाल्लाह मैंने 50 फिल्में से ज्यादा लिखी है, लेकिन अभी भी अगर मुझे किसी चीज से डर लगता है तो वो लिखने से डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 50-55 फिल्में हैं जो लिखी है, ये शायद किसी और अनीस बज़मी ने लिखी है, ये बहुत मुश्किल होगा मुझे लिखना। तो मुझे लगता है कि राइटिंग बहुत मुश्किल काम है और एक महदूद वक्त में भी करना होता है, इसलिए कि हम शायरों की तरह ये तो नहीं है कि भाई ऊपर से शेर नाजिल होगा तब कहेंगे, हमें प्रोड्यूसर के हिसाब से उन्होंने पैसे दिए हैं, एक्टरों ने डेट्स दिए हैं, तो हमारा मूड हो या नहीं हो हमको उसी वक्त में सब करना होता है। तो ये मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मतलब मैंने ठीक से कर लिया है, कुछ लोगों का प्यार, कुछ जिम्मेदारी, कुछ ऊपर वाले का मतलब मेहरबानी, ये कहिए, ये सब कुछ मिला मुलाकर मैंने हमेशा वक्त पर अच्छी तरह से जो मेरी काबिलियत के हिसाब से बेहतर वह फिल्म बना सकता था वो मैंने बनाने की कोशिश की।
अच्छा, हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ हैं, कुछ एक को हम लेते हैं हमारे साथ। जफर इकबाल लुड़का बिहाड़ी से। जी जफर इकबाल,
अस्सलाम वालेकुम बाजी साहब।
जी वालेकुम सलाम भाई।
वालेकुम सलाम जफर भाई, वालेकुम सलाम
जी। मोहतरम मेहमान साहब को मैं वेलकम करता हूँ, अलग से सलाम पेश करता हूँ जी इनको।
बहुत बहुत तो
गुजारिश है, बहुत
इनको तो वेलकम भी करें और वेलकम बैक भी करें फिर दोबारा से जब जब रात को आए तो।
अच्छा सर, गुजारिश है कि एक ऐसी फिल्म आप लिखें जी, मेरी रिक्वेस्ट है जनाब से, जिससे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अवाम में आपस में रवाबत अच्छे हों और उनके ताल्लुकात वो पहले जैसे हों, पार्टीशन से पहले
जैसे। एक्चुअली जफर भाई, मेरे मन की बात छीन ली, मेरे दिल की बात जो है यही है, मैं एक फिल्म पे काम जरूर कर रहा हूँ इस तरह की, इसलिए कि देखिए अभी एक फिल्म जो आई हमारे सलमान भाई की,
बजरंगी
भाईजान, वो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, इसलिए कि वो फिल्म जो है वो अपने वो प्यार फैलाती है, वो उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं किसी को कुछ नफरत हो, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आवाम जो है आपस में मुझे लगता है कि बहुत प्यार है। जब भी पाकिस्तान से कुछ लोग यहाँ आते हैं वो हम इतना उनको प्यार देते हैं, और जब जब मैंने ये कहानी यहाँ जो लोगों से सुनी है कि जब लोग हमारे जाते हैं तो जो प्यार मिलता है, तो एक्चुअली मुझे लगता है कि प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा है, जो छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस वो छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है कि मैं एक फिल्म अभी एक लिख रहा हूँ इस तरह की, और अल्लाह ने चाहा अगर फिल्म बहुत अच्छी लिखी गई तो मैं जरूर बनाना चाहूंगा, इसलिए कि मुझे बेसिकली फिल्मों जो भी मैंने बनाई उसमें मैंने यही कहने की कोशिश की है कि आज की दुनिया में नफरत की नहीं, लोगों को प्यार की जरूरत है, और प्यार जो है वो ही बांटना चाहिए, और हम लोग जो हैं ये कलाकार हैं, फनकार हैं और राइटर्स हैं, तो ये काम हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा।
अच्छा, बहुत आप ही लोगों की जनरेशन के जो डायरेक्टर और एक्टर्स हैं, میرا خیال ہے یہ کام آپ ہی لوگ کر سکتے ہیں, اور یہ میں دیکھتی ہوں پاکستان سے بھی جب لوگ آتے ہیں ان کے یہی جذبات اور خواہشات ہیں. میں آپ کی ایک فلم کے بارے میں بڑی مجھے وہ ایک جیسے انٹریگنگ سی اسٹوری بھی تھی, مختلف تھی بالکل, آنکھیں جو فلم تھی, تو اس کی کہانی بھی آپ نے لکھی تھی؟
جی کہانی بھی میں نے لکھی تھی, اسکرین پہ بھی میں نے لکھا تھا, اینڈ ڈائیلاگز بھی میں نے لکھے تھے.
اچھا,
اور بڑی مشہور فلم تھی یہ 93 میں ریلیز ہوئی.
بہت خوبصورت. میں پہلے ایک ہم جھلک سنتے ہیں آپ کی فلم کی, اور اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.
جی
آنکھیں, فلم آنکھیں میں امیتابھ بچن صاحب جو ہیں, تو مجھے یہ بھی
اچھا, یہ امیتابھ بچن صاحب والی جو فلم ہے یہ میں دوبارہ, یہ جو امیتابھ بچن صاحب والی فلم جو آنکھیں, اس کا جو سیکول ہے یہ میں بنا رہا ہوں. میں نے جو ہے امیتابھ بچن صاحب والی جو فلم تھی وہ نہیں, میں نے جو گووندا چنکی پانڈے وہ آنکھیں لکھی تھی.
اچھا,
یہ آنکھیں میں نے نہیں لکھی, ابھی میں ڈائریکٹ کر رہا ہوں اور لکھ رہا ہوں, جو سیکنڈ آنکھیں ہم بنا رہے ہیں.
اچھا, تو چلیے یہ تو آپ نے اچھی میری غلط فہمی دور کی, کیونکہ میں نے دونوں ہی دیکھی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ نے اس میں سے کون سی بنائی ہے, کیونکہ عام طور سے
پرانی فلم.
اچھا, تو ویسے آپ نے اب تک جتنی کہانیاں لکھیں, آپ کی سب سے پسندیدہ کہانی کون سی ہے فلموں کی؟
میں اگر دیکھیے آپ کو کہوں گا, پتا نہیں آپ کو کیسے لگے گا, میں ایمانداری سے کہوں جو میں اپنے دل سے محسوس کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ کافی فلمیں ایسی ہیں جو میرے بہت دل کے قریب ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نو انٹری جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے فلم, اس لیے کہ اس میں ایک عجیب طرح کی کامیڈی تھی. پھر مجھے پیار تو ہونا ہی تھا جو فلم تھی, وہ رومانٹک لو وہ مجھے بہت پسند ہے. مجھے یہ ویلکم جو ہے دونوں فلمیں یہ بڑی پسند ہے, اور ایک فلم میں نے بنائی تھی سسپنس تھرلر دیوانگی. تو میں نے سارے جانرز پہ کام کیا ہے, تو یہ چار پانچ فلمیں میرے بہت ہی دل کے نزدیک ہے. لیکن مجھے ہمیشہ سے پتہ نہیں ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ میرا جو بیسٹ کام ہے وہ ابھی تک میں نے کیا نہیں ہے, وہ انشاءاللہ ابھی میں کروں گا.
مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ آپ نے اپنا بیسٹ کام نہیں کیا, اور یہی چیز جو ہے آپ کی فلموں کو بہتر سے بہتر بناتی رہے گی, کیونکہ ایک اچھا جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا. چلیے ایک جھلک سنتے ہیں آپ کی فلم ریڈی سے, اور یہ بھی تھوڑا سا آپ کو ہے ہیومر کا شوق, میں نے دیکھا ہی سنتے.
ہیلو, آپ سیٹی کیوں مار رہے ہو؟ میں تو پہلے سے پٹا پٹایا ہوں.
پٹائی کی پیدائش ہے.
یہ کون ہے, تمہارا کوئی بوائے فرینڈ تو نہیں؟
نہیں نہیں, دور کا دوست ہے.
دور کا دوست,
جیسے کہ دور کے رشتے دار ہوتے ہیں نا ویسے ہی.
اچھا, پھر مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ میری دور کی نظر کمزور ہے.
تو پھر چلے کمزور آدمی.
او ہیلو, اوے تیرے جیسے بندے کو نا میں ڈرائیور رکھتا ہوں.
اچھا, تو پھر دو چابی. چلو,
چابی لگی ہوئی ہے, رکھ لیا ڈرائیور. کم آن ڈارلنگ, پیچھے آ جاؤ. آ جاؤ آ جاؤ بھائی, پیر بچا کے.
تو یہ سلمان صاحب کے ساتھ فلم ہے آپ کی, یہ آپ کی تازہ ترین فلم یہی ہے؟
جی ہاں, آخری سلمان کے ساتھ جو ہے نو انٹری کے بعد یہی فلم بنائی تھی. دونوں فلم بے حد کامیاب رہی, لوگوں نے بہت پسند کی, اینڈ سلمان بھائی کے ساتھ کام کرنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے. میں تو ان کو یہ کہوں گا کہ سلمان بھائی کا نام جو ہے وہ ناچے دل خان, اگر آپ پر دل ہے تو وہ سب کچھ کریں گے, اینڈ بہت اچھے انسان ہیں, بہت مزہ آتا ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا, اینڈ گریٹ ایکٹر. مجھے بیکاز کچھ ایک سین کبھی کبھی لکھنے کا یہ بھی لگتے ہیں کہ یار یہ شاید اتنا اچھا نہیں لگے گا اسکرین پہ, بٹ جس طرح یہ اپنے سلمان بھائی کرتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ اتنا نیچرل طریقے سے وہ کامیڈی کرتے ہیں, ان کی کامیڈی ٹائمنگ جو ہے وہ لاجواب ہے.
میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا نا آپ جس طرح لکھتے ہیں نا, یہ کچھ ان کی شخصیت کا ریفلیکشن بھی ہے, کیونکہ میں جب ان کو ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں دیکھتی ہوں اسٹیج شوز وغیرہ کرتے ہوئے, تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان میں بھی ایک مزاحیہ باتیں کرنے کا اور فقرے لگانے کا اور اپنا خود اپنا مذاق اڑانے کا, جو ایک بہت بڑی خوبی ہے ان میں یہ بات ہے کہ وہ کرتے ہیں. تو سلمان خان کے لیے ہم سب ایسا محسوس کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک بہت درد مند آدمی ہے, اور اس میں ایک مجھے تھوڑی سی اس کی تصدیق ہوئی جہاں زیب سے بھی, جہاں زیب ان سے بھی بہت ملنا چاہتے تھے تو بڑی محبت سے ان سے ملے. تو یہ عام ان کا رویہ یہی ہے اپنے جو اسٹاف کے لوگ ہوتے ہیں؟
نہیں, بیسیکلی آئی تھنک ہی از اے ویری نائس پرسن, دل سے بہت ہی مطلب جس کو کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھے انسان ہیں. آپ دیکھیے کہ آج بھی ان کے چہرے پہ وہ معصومیت ہے جو آپ کافی ینگ بچے جو ہیں ان کے چہرے پہ نہیں دیکھ پائیں گے, جو اس ایج میں بھی آج سلمان بھائی کے چہرے پہ جو معصومیت ہے
جی.
وہ تبھی ہو سکتی ہے جب دل کے بہت اچھے انسان ہوں.
نہیں, میں یہی بات کہہ رہی تھی, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو لوگ تھوڑے سے ضرورت مند ہوتے ہیں یا زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا ان سے عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں, تو وہ ان کو بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں ان کی.
जी बिल्कुल, मैंने बहुत कम लोगों को ऐसा देखा है कि वरना लोग जो हैं यहाँ पे इस तरह यंगस्टर्स से मिलते हैं जैसे एक बहुत बड़ा कंपटीशन सामने आ रहा है, बट मैंने देखा है कि यंग बच्चों से वो इतना प्यार करते हैं, उनको एक सलाहें देते हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस जो है वो उनको शेयर करते हैं, एंड ये बहुत ही बड़ी बात है मुझे लगता है। तो उनको अपने आप पर, आप यही भी देखिए कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो भी अपने जहाँ पर उनको ये लगता था कि भाई मेरा काम नहीं हो रहा है तो वो ये कहते थे कि सर ये मेरे चार दोस्त हैं इनकी तस्वीरें देख लीजिए इनको काम दे दीजिए।
अच्छा,
तो ये बहुत बड़ी बात है,
बहुत बड़ी बात है। तो खुद आपके भी दरवाजे पे लाइन तो लगी रहती होगी, इतना बॉम्बे में तो हर आदमी मुझे लगता है फिल्म में जाने का शौकीन है, तो किस तरह डील करते हैं आप लोगों के इस हुजूम से?
मैं आपको बताऊं कि जो है अपना मेरे जो ये फोन है वो लोग, मेरे असिस्टेंट, मेरे सारे लोग ये कहते हैं कि आप सबका फोन अटेंड करते हैं, क्यों करते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने खुद ने भी बहुत लोगों को फोन किया और लोगों ने फोन नहीं उठाए तो थोड़ी सी तकलीफ तो होती थी, तो मैं जिन जिन से मिलना जरूरी समझता हूँ उनसे मिलता हूँ और मैं उनके साथ बैठता भी हूँ, तो मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से ही लोगों से मिलता हूँ और मेरे से जो हो सो चाहे वो सलाह के रूप में हो चाहे और किसी रूप में हो जो मदद कर सकता हूँ वो मुझे लगता है मेरा फर्ज है, इसलिए कि आज अल्लाह ने जिस जगह मुझे पहुंचाया है मुझे लगता है कि वो सिर्फ अगर मैं अपने बारे में सोचता रहूं नहीं है, मुझे इतनी जगह अगर ऊपर वाले ने पहुंचाया है तो मेरा फर्ज है कि मैं अपने से जो कम है जिनको जरूरत उनके साथ चाहे किसी भी सूरत में उनकी जरूरत को अगर मैं पूरा कर सकूँ तो आई विल बी देयर।
अच्छा, बहुत मुझे अंदाज़ा थोड़ा सा हुआ था जब मैंने आपको कॉल की थी, क्योंकि दरमियान में कोई सेक्रेटरी वगैरह नहीं आया तो वैसे तो मैंने अंदाज़ा किया कि आप बराह रास्त लोगों से बात करते हैं और उनसे मिलते हैं, और जहाँ जेब के पास ज़ाहिर है वो एक ऐसे ही आम बच्चा था जिसके पास आपका नंबर था। तो चलिए एक हम थोड़ा सा सुनते हैं आप ही की फिल्म की झलक और उसके बाद और बातें करेंगे। ये फिल्म जो है ये भी बड़ी एक मुतनव्वो फिल्म थी और ख़ास तौर पे अजय देवगन का जो कैरेक्टर था, तो ज़ाहिर है इसमें हम उनका कमाल तो है ही, लेकिन कुछ डायरेक्टर का भी कमाल है जो कुछ हमें नज़र आया स्क्रीन पर, तो क्या तजर्बा है आपका उस फिल्म के लिए?
ये फिल्म मेरे लिए बड़ी खास थी इसलिए कि इस जॉनर में मैंने कोई फिल्म ही भी नहीं थी और मैं ये डायरेक्ट करने जा रहा था सस्पेंस थ्रिलर, एंड अजय देवगन ने इससे पहले कभी कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं किया था, हालांकि उनके दूसरी बहुत बड़ी फिल्मों में ऑफर भी आए थे, डर भी फिल्म जो है ऑफर हुई थी पहले अजय देवगन को, तो मेरे लिए ये था कि मैं अजय से ये करवाना चाहता था, अजय से एक बहुत ही खास रिश्ता है इसलिए ये पहली फिल्म उन्होंने मेरी की तो वो एक अलग ही उनके लिए मेरा प्यार मोहब्बत है, तो ये फिल्म मुझे पता था कि ये जो कैरेक्टर है ये स्प्लिट पर्सनैलिटी का कि एक जगह ये एक संगीतकार है, म्यूजिक डायरेक्टर है तरंग, और दूसरी तरफ ये किलर है रंजीत, ये किरदार जो है अजय बहुत खूबसूरती से करेंगे और उन्होंने इतना अच्छा काम भी किया, तो ये फिल्म जब मैंने उनको सुनाई उनको बहुत अच्छा लगा और ये पहली फिल्म थी जिसमें नेगेटिव कैरेक्टर अजय देवगन ने किया था और ये फिल्म जो है लोगों को बहुत पसंद आई और मेरे लिए इसलिए खास थी कि इस जॉनर में मैंने कभी काम नहीं किया था और عباس مستان جو ہیں وہ سسپنس تھرلر بناتے ہیں, میرے بہت اچھے عزیز دوست تھے, انہوں نے جب یہ فلم دیکھی تو انہوں نے اتنی تعریف کی تو وہ ایک بڑی بات تھی کہ جن لوگوں نے ہمیشہ اسی طرح کی فلمیں بنائی ہے ان کو بھی بے حد فلم یہ پسند آئی تھی.
اچھا نہیں, یہ فلم تو واقعی اس قابل ہے کہ پسند کیا جائے دونوں ہر طرح سے, یعنی اداکاری کے لحاظ سے بھی اور ڈائریکشن کے لحاظ سے بھی. اچھا آپ سے ایک سوال پوچھا ہے ہمارے حیات راہی نے فیس بک پر کہ خود آپ کس ڈائریکٹر سے متاثر ہیں؟
میں راج صاحب, ہمارے جو راج کپور صاحب ہیں وہ, اور کے آصف صاحب کی جو فلم ہے مغل اعظم, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنی بار دیکھی ہوگی, شاید 300-400 بار. اور محبوب خان صاحب, بیمل روئے, یہ چاروں لوگ جو ہیں ان کے کام کا میں ہمیشہ سے بہت ہی مطلب وہ رہا ہوں کہ بس ان کے کام کو میں دیکھتا ہوں اور مطلب میں جسے کہتے ہیں کہ ایک نشے میں جھوم سا جاتا ہوں کہ کتنا خوبصورت ان لوگوں نے کام کیا ہے. تو میں راج صاحب اور آصف صاحب, محبوب صاحب اور بیمل روئے, یہ میرے من پسند یہ ڈائریکٹرس ہیں.
اچھا, یہ تو حیات رائی کا سوال تھا, اور خضر حیات نے محض آپ کو کمپلیمنٹ پیش کیا ہے گریٹ پرسن کہہ کے, تو
جی تھینک یو سو مچ,
بڑی محبت سے. اچھا, اس طرح کے کمنٹس بہت سے ہمارے سننے والوں نے لکھے ہیں, کیونکہ آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں تو میں کچھ چیزیں بیچ میں نکالتی جا رہی ہوں. اب یہ مجھے بتائیے کہ جو سیکول آپ بناتے ہیں, پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے بچوں میں کوئی جڑواں ہے, یعنی ٹوئنز ہیں آپ کے؟
نہیں نہیں نہیں, میں نے بہت ساری فلمیں جو ہے وہ جڑوے پہ مطلب مجھے لگتا ہے 8 فلمیں لکھی ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے فلم لائن میں انڈیا میں بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ڈبل رول کی فلم ہے تو وہ شاید کسی اور نے لکھی ہے یا انیس نے لکھی ہے, انیس نے ڈائریکٹ کی ہے. میں نے کافی 8-10 فلمیں اس طرح کی بنائی جڑوا.
ہاں, اور اس میں جو کردار ہیں وہ بھی, تو میں نے کہا شاید مطلب ہوتا ہے نا اپنے گھر سے کچھ آدمی کو انسپریشن ملتا ہے, میں نے کہا شاید آپ کے بچوں میں کوئی جڑواں بچے ہیں. اچھا, تو بچوں کی بات ہی آ گئی, تھوڑا سا بچوں کے بارے میں بات کریں اور آپ کی بیگم صاحبہ کے بارے میں.
جی, میری جو وائف ہے ان کا نام ہے فاطمہ, میری جو بیٹی ہیں وہ سب سے بڑی ہیں ثنا, اور اس سے چھوٹی بیٹی ہیں صبا, اور اس کے بعد مجھے ایک بیٹا ہے فیضان, اور اس سے چھوٹی بیٹی ہے سارا.
اچھا,
تو میری جو بیٹی ہے بڑی والی سنا, ماشاء اللہ وہ 24-25 سال کی ہیں اینڈ گرافک ڈیزائننگ کر رہی ہیں.
سبا
جو ہے چھوٹی, اس کی شادی ہو گئی ہے. فیضان جو ہے ابھی کالج میں ہے, ہی از انٹرسٹڈ ان فلم میکنگ, وہ رائٹر ڈائریکٹر بننا چاہتا ہے, تو ابھی اس کو میں اس طرف کچھ کام کرواؤں گا. اور جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ ہے 10 سال کی سارا, وہ جو ہے وہ پڑھائی کر رہی ہے ابھی اسکول کے اندر.
تو مطلب یہ کہ آپ نے اپنے بچوں کو نہ تو روکا اور نہ مجبور کیا کہ وہ ضرور آپ ہی کی لائن میں آئے, آپ نے ان پہ چھوڑ دیا.
مجھے لگتا ہے کہ ہاں, بچوں کو وہ کرنے دینا چاہیے جو اس کا ان کو شوق ہو. آپ ایز اے پیرنٹ ان کو صرف گائیڈ کر سکتے ہیں اور ان کے اس شوق کو پورا کرنے میں آپ جتنی مدد کر سکتے ہیں, اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ من پسندیدہ کام اگر کرتے ہیں تو وہ پھر کام نہیں لگتا, پھر وہ مزہ بھی دیتا ہے کام. اور اگر آپ کچھ اور کام کرنا چاہتے ہیں اور کسی اور کو بناتے کچھ اور بنانا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ بوجھ ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے اس پہ بہت خوبصورت جو فلم بنی ہے وہ ہے 3 ایڈیٹ, مجھے وہ فلم بہت
اچھی ہے. بالکل, اور یہ سچ ہے, ماں باپ اپنی جو خواہشات ہیں وہ ہمیشہ بچوں پہ پوری کرتے ہیں کہ بچے وہ کریں جو وہ نہیں کر سکے.
ہاں, مجھے نہیں لگتا وہ تھوپنا چاہیے.
بالکل. اچھا, ہمارے ساتھ کالرز ہیں کچھ, شیر خان کاکڑ بلوچستان سے. جی شیر خان کاکڑ, شیر خان,
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
جی شیر خان,
ٹھیک ٹھاک ہیں؟
جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ بتائیے کیسے ہیں؟ جی جی وہ بات سن رہے ہیں آپ کی, بزمی صاحب بات سن جی
جی جی بھائی بولیے.
آپ کو پروگرام میں صرف ایک سلام دیتا ہوں, اور آپ کو مہمان سے یہ بات, یہ خاص ہے کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟
اچھا, جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟
جی میں ایکچولی ہوں اپنا احمد آباد کے آگے, ایک چھوٹا سا گاؤں ہے موٹا سا, تو میں گجرات سے بلانگ کرتا ہوں, لیکن میں بچپن میں ہی جو ہے والد صاحب کے ساتھ یہاں آ گیا تھا بامبے میں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جو جنم استھان ہے وہ ہے گجرات, اور میری جو کرم بھومی ہے وہ بامبے ہے.
لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ جو سسرال ہے وہ بھی تو وہیں پر ہے گجرات میں.
جی 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 وہ ہے گجرات, صحیح ہے, اور وہ اکثر جانا ہوتا ہے, اس لیے کہ वहाँ शादियाँ और वो सब चलती रहती हैं और वहाँ जाना ही होता है। तो मेरी बड़ी जो बहन है वो भी वहीं है, मेरा भाई भी वहीं है, मेरे सारे रिश्तेदार एक्चुअली अभी भी वहीं पर है, तो मेरा आना जाना काफी चलता रहता है।
अच्छा, तो आपकी जो बेगम है फातिमा साहिबा एक गाँव की गोरी है, तो जहाँ से आपके माँ बाप के
जी जी मेरे गांव से ही हैं और ये मेरी मम्मी और मेरे अब्बा ने पसंद किया था इन्हें मेरे लिए और ये अरेंज मैरिज थी। तो मुझे लगता है कि मेरे अब्बा और अम्मी जो हैं वो उन्होंने बिल्कुल सही मेरे लिए सोचा था, इसलिए ये ईमान मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आज मैं जिस जगह भी हूँ जहाँ भी हूँ उसमें उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हाथ है। मुझे उन्होंने घर की उतनी टेंशनें कभी नहीं होने दी, वो वरना शायद मैं इतना काम नहीं कर पाता। एंड बच्चों को जो तरबियत देती है वो मुझे लगता है फादर से ज्यादा माँ देती है, तो वो जो घर में है तो उन्होंने जो तरबियत दी है तो आज माशाल्लाह बच्चे भी जो है वो बहुत ही सही राह पर है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो बिकॉज ऑफ फातिमा हुई है एंड मुझे लगता है मेरे अब्बा और अम्मी ने बहुत सही फैसला किया था। ये
बहुत खूब। अच्छा, पेशावर से वाजिद साहब हमारे साथ हैं। जी वाजिद साहब।
अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं वाजिद हूँ। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, एक तो ये है कि क्या आप पाकिस्तानी फिल्में देखते थे, और अगर देखते हैं तो आपको पाकिस्तानी फिल्मों से हीरो हीरोइन कौन से पसंद है, और डायरेक्टर को ही अगर आपको पसंद हो तो सवाल से बताइए।
बहुत अच्छा सवाल है, बताइए।
जी जी जी, मैंने काफी फिल्में देखी हैं पाकिस्तान की, और मैंने काफी सीरियल्स वगैरह भी देखी, मुझे सीरियल्स बहुत अच्छे लगते हैं। पाकिस्तानी फिल्मों में मुझे लगता है बिकॉज ऑफ द बजट शायद जो वो कहना चाहते हैं वो उस बड़े लेवल पर नहीं कह पाते, लेकिन मुझे राइटर्स जो हैं वहाँ के बहुत मुतासर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब पार्टीशन हुआ तो सारे राइटर्स वहीं चले गए, बहुत कम यहाँ रह गए। हाँ। तो मैं वाकई मतलब वहाँ की जो राइटिंग है वो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, खासकर जो डायलॉग्स लिखते हैं वो इतने अच्छे होते हैं। आजकल हमारे यहाँ जी पर जो एक प्रोग्राम चल रहा है जिंदगी, वो भी हमारे घर में इतना शौक से लोग देखते हैं, तो सारे आर्टिस्ट जो है वो बहुत ही कमाल काम करते हैं, बहुत ही खूबसूरत थ्रिलर है बना देख रहे हैं हम, और इतने खूबसूरत डायलॉग, और डायलॉग के खूबसूरती की वजह भी ये है कि उर्दू जबान है और उर्दू जो जबान है उसमें ही इतनी मिठास है और इतना खूबसूरत लहजा है वो, कि वो आधे तो उस जबान की वजह से ही डायलॉग्स अच्छे लगने लग जाते हैं।
थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जैसे कि एक पॉलिटिकल कोशिश थी है, पाकिस्तान में भी थी और इंडिया में भी थी, कि जबान जो है उसकी सादगी, जैसे वहाँ पे संस्कृत को बहुत ज़्यादा शामिल कर दिया गया, मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ जो किसी की समझ में नहीं आते, इसी तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो हिंदी के लफ्ज़ कम करके और अरबी और फारसी की तरकीबें ज़्यादा ले आए, तो लेकिन मुझे लगता है कि जो परफेक्ट नज़र आती है जबान मुझे वो फिल्मों में नज़र आती है, एक आम आदमी जो जबान बोलता है।
बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर वो उर्दू की पूरी उर्दू जबान भी है और हिंदी का भी, जैसे मैंने आपको मेरे वाले साहब का शेर सुनाया वो आप देखिए कि उसमें उर्दू और हिंदी दोनों मिलती है, कि प्यार समझे ना कोई प्यार का बंधन समझे, नाजो अंदाज ही को रिस्क का साधन समझे। तो मुझे लगता है वो जबान जो है हमारी फिल्मों की वो एक बड़ी खूबसूरत जबान है, जिसमें उर्दू भी है, हिंदी भी है और कुछ अंग्रेजी भी है, तो वो एक ऐसी जबान ही जो हर इंसान चाहे वो कहीं को भी बिलोंग करता हो वो समझ सके।
अच्छा, एक और हमारे कॉलर हैं मुरीद खान दाऊद खेल मियांवाली से। जी मुरीद खान साहब।
जी
वालेकुम सलाम भाई,
अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। मैं इनसे अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के फनकार मिलकर कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाते जो पार्टीशन के वक्त जो ज्यादती हुई हैं या गलती हुई हैं या लोगों के साथ जुल्म हुए हैं उनका अजाला हो जाए, ताकि वो जो तलखियाँ हैं ख़त्म हो जाएं। हमारी आवाम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन हुक्मरान कोई ना कोई बीच में पंगा खड़ा कर देते हैं, तो मैं इनसे नहायत अदर से गुजारिश करता हूँ कि कोई ऐसी फिल्म मिलकर बनाएं ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आवाम के साथ प्यार मोहब्बत और बढ़ जाए।
जी
क्या बात है, वाह वाह, इतना नेक ख्याल है आपका, और आपको ईमानदार से बताऊं कि मुझे भी अक्सर यही ख्याल आता है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए। बहुत साल पहले है, अभी जैसे देखिए कि रशिया के साथ भी मिलकर कुछ लोगों ने यहाँ पे फिल्में बनाई थी और काफी बाहर बाहर के लोगों से मिलकर जो है लोग फिल्में बनाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा भी हो कि भाई हिंदुस्तानी लोग और पाकिस्तान के सारे लोग मिलकर भी कुछ अच्छी फिल्में बनाए, और मुझे लगता है वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म होगी। मुझे लगता है कि ये ऐसा हो तो दोनों ही मुल्कों के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कि जो पुरानी पुराने घाव है और पुरानी चीजें हैं उसको भूलकर हमको एक नया आगाज करना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए, और वो जो प्यार मोहब्बत है वो उसी तरह रहना चाहिए कि एक जो पड़ोसी हम मुल्क है, हम एक दूसरे के इतने नजदीक भी हैं, लेकिन उसके बीच में जो एक दीवार है या एक जो दरार है, मुझे लगता है वो खत्म करने जो जिम्मेदारी है या वो हम लोगों पर भी बनती है और वहां भी बनती है, और मिलकर अगर काम करें तो ये इस जो रास्ता है उसको और हम नजदीक पाएंगे। मतलब
अच्छा, भक्कर से हमारे साथ हैं अली हसन साहब। जी अली हसन।
जी
अली हसन
साहब,
वालेकुम सलाम। जी
एक सवाल है, ऐसा काम जो आप अभी तक ना कर पाए हो और दिल में खलिश हो।
अच्छा, ये आपने कहा तो था, इन्होंने बात तो बड़े पते की पूछी है कि वो काम है कौन सा जिसके करने की अभी तक तमन्ना है।
देखिए, मैं बताऊं कि जो फिल्में मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ, एक फिल्म जो है मेरे बहुत दिल के नजदीक है वो मैं लिख रहा हूँ पिछले समझ लीजिए 5-6 सालों से, और मैंने जब भी फिल्में लिखी हैं वो कभी 1 महीने में लिखी है, कभी 2 महीने में लिखी है, कभी ज्यादा हो गया तो 6 महीने में लिख दी, 4 महीने में लिख दी। ये वो फिल्म है जो मैं पिछले 5-1 साल से सोच रहा हूँ कि ये मैं बनाऊंगा, तो वो मेरी एक मतलब मेरी एक बहुत ही तमन्ना है कि अल्लाह मुझे ऐसी मदद करे कि मैं वो फिल्म बना सकूं, इसलिए कि उसका जो बजट है वो मुझे नहीं लगता है कि हम एक कारोबारी हिसाब से वो फिल्म बना सकते हैं। आज फिल्में बनाते हैं, हमें पता है कि हम 1 रुपए में बना रहे हैं, 1 रुपए 10 पैसा मिल जाएगा, वो शायद इस तरह की फिल्म है कि पता नहीं उसमें कितने लाखों कितने करोड़ रुपए लग जाएं और शायद पैसा उतना वापस आए नहीं आए, लेकिन वो एक अलग काम है। तो वो एक फिल्म मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं लिख रहा हूँ, और मैं उसके लिए कोशिश करूंगा कि वो मैं अपनी एक फिल्म में बना दूं, ताकि मुझे एक वो रहेगा सुकून रहेगा कि भाई मैंने जितना भी काम किया, लेकिन ये एक मैं हमेशा से बनाना चाहता था।
मेरा ख्याल है कि रिटर्न आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि इसकी एक मिसाल बजरंगी भाईजान है। ऐसी फिल्में ना लोगों के दिलों को छू लेती हैं। अच्छा, हमारे साथ हैं गुजरांवाला से राणा तारिक। जी राणा साहब, इनका फोन ड्रॉप हो गया। रावला कोर्ट से हमारे साथ हैं सैयद
जी
अदीब हसन। जी अदीब साहब।
जी जी, सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम भाई।
वालेकुम सलाम अदीब साहब।
हाँ, बहुत खुशी हुई है, मैं अभी रेडियो खोला तो आपका प्रोग्राम अक्सर सुनता ही रहता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और मैंने लता जी पे, शमशाद बेगम पे, मोहम्मद रफी पे और मेहंदी हसन पे बहुत कॉलम लिखे हैं। हेलो।
जी जी जी
जी।
तो आप
जी,
अच्छा, आप अखबारों में लिखते हैं आप?
हाँ जी जी, कालम लिखे इन पे और मैं खुद भी गाता हूँ।
अच्छा,
बचपन में मैंने शमशाद देवम के और लता जी के और रफी साहब के बहुत गाने गाए, रफी साहब से मैं मुलाकात भी की 1970।
माशाल्लाह।
लेकिन आपको तो किस को इनकी फिल्म का गाना आता है? हमारे अनीस साहब की फिल्म का, अनीस बज़मी की किसी फिल्म का?
नहीं, कौन सी फिल्म?
आप अब बताइए बज़मी साहब, कौन सा गाना सुनेंगे?
जी जो उनको याद हो, या प्यार तो होना था कि गाने थे, अजनबी मुझको इतना बता दिल मेरा क्यों परेशान है,
याद है आपको? ये तो जरा मतलब लग रहा है कि जी
नहीं नहीं सर, नहीं याद है
जी।
लता जी का सुनना चाहें तो सुना सकता हूँ, लेकिन मैं उससे बात करना चाहता हूँ, बात ये करना चाहता हूँ, प्रोग्राम जब कभी भी आप देती है बहुत ही खूबसूरत, तो आप लोग बहुत मुबारकबादी के मुस्ताहिक हैं, लेकिन वो पुराने लोग हैं, वो जो जोरा भाई थी और हमारी वो कैनन देवी थी और फिर
जी
हमारी जो सरिंदर कौर, नरिंदर कौर, पानी पाग सुमित्रा दे यारी ते दो दिन भी नीने सारी उम्र दे, पुराने पुराने प्रोग्राम भी दे और अमित साहब आपकी गुफ्तगू और आपका लहजा जो है बहुत ही खूबसूरत है, और ऐसी फिल्म बनाए, मैंने बहुत मजाक लिखे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रास्ते खुलने चाहिए, ये एक ही लोग है,
क्या बात है,
लोग है
जी बिल्कुल।
अल्लाह करे,
मेरा ख्याल है कि यही बात कई लोग कह रहे हैं और शायद अब ये फनकार ही ऐसा कर सकते हैं।
यही, हाँ मैंने यही महसूस किया कि वहाँ पर भी यही बात है जहन में, और मैं आपको यकीन से बताऊं कि यहाँ पर कई लोग मुझे कहते हैं कि यार इस तरह की एक फिल्म बनाओ जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान का प्यार मोहब्बत जो है एक्चुअली जो है वो सामने आया है। और मुझे आज आप लोगों से बात करके और वहां जितने लोगों से बात हुई यही बात जब सामने आई तो अब मैं और सीरियसली इस बारे में सोचूंगा।
अच्छा, हमारे साथ बलूचिस्तान से एक और कॉलर है, अब्दुल वहाब शिरानी साहब। जी शिरानी साहब,
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम भाई।
वालेकुम सलाम।
जी मैं अब्दुल वहाब शिरानी बलूचिस्तान से अर्ज कर रहा हूँ, जिला शिरानी से।
जी
जी
जी, मेहमान से मेहमान गरानी से मेरा यही सवाल है।
जी क्या है सवाल?
यही सवाल है कि ये फिल्म बनाना, ये तसवुरात, ये ख्यालात इकट्ठा करना, ये तो हर एक बंदे का काम नहीं है, खास खास ये तो फितरत की यानी गिफ्ट बाय गॉड अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है।
जी बिल्कुल
जी।
तो इनको
लेकिन मेहमान से
जी
मेहमान से मेरा यही सवाल है कि आप एक ऐसा फिल्म बना दे, एक ऐसा फिल्म तहरीर कर दे कि बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मबैन में जो चिपकलशी भी खत्म हो जाए और लोगों पर एक ऐसे तसव्वुरात एक ऐसे असर आ जाए कि लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते। फिल्म तो मैं ये प्री आइडिया थे, बहुत सारे ऐसे फिल्में हैं जो काम की फिल्में हैं, कुछ ऐसे फिल्में हैं जो नफरत की, कुछ ऐसे हैं जो मोहब्बत की, लेकिन मेरे यही गुजारिश है कि आप ऐसे फिल्म बना दें।
शिरानी साहब यहाँ पे मैं ये कहूँगी, एक थोड़ी छोटी सी बात मैं ही कहूँगी कि खास तौर पे माँ बाप की हैसियत से हमारा भी ये फर्ज होता है, चाहे हम किसी भी मुल्क में रहते हों, चाहे हम अमेरिका में रहते हों, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं भी, हम अपने बच्चों को मोहब्बत करना सिखाएं। हम अपने बच्चों को पुरानी दुश्मनियों की तो हवा भी नहीं लगने दें, उनसे कभी इस बारे में बात ना करें।
तो बहुत अच्छी आपने बात कही है कि वो कहानियां, वो जो घाव, वो जो दर्द है, उसके बजाय हम नई बातें करें। और बिल्कुल सही बात है, और ये हर बार काफी लोगों ने ये कहा और अभी शिरानी साहब ने भी यही कहा, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं अब वाकई बहुत सीरियसली सोचूंगा कि इस तरह की फिल्म बनाऊं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो बीच हल्की फुल्की भी जो एक दीवार है या दरार है वो खत्म हो और प्यार मोहब्बत और बढ़े।
वैसे क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से प्रोग्राम करती हूँ तो मैं इस दीवार को हल्का फुल्का नहीं समझती। सियासी तौर पे तो ये ऐसी दीवार है कि बहुत से लोग सर फोड़ते रहते हैं इससे, खासतौर पे कश्मीर के दोनों हिस्सों में।
मैं कहूंगा कि अगर दीवार अगर आपको बहुत भारी और बहुत ये दरार गहरी लग रही है तो मेरे ख्याल से ये सारे हुक्मरान और ये बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स के, अगर आप यहाँ आकर आम इंसानों से बात करें तो आपको पता लगेगा कि वो भी जो है पाकिस्तान को बहुत पसंद करते हैं, वहाँ के लोगों को बहुत पसंद करते हैं।
मैं तो कई दफा आई हूँ और मेरा बिल्कुल वहाँ के लोगों में ऐसी मोहब्बत मैंने पाई पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, जिस तरह की पाकिस्तान में देखती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोशिश करते रहना चाहिए। आखिर दीवारें बर्लिन के लिए भी तो लोग समझते थे कभी नहीं टूटेगी, सर्द जंग कितनी खौफनाक थी, मगर टूट गई ना एक दिन वो दीवार। अच्छा चलिए, एक इन्होंने भी बात की थी शिरानी साहब ने कि तब्दील करने की ताकत होती है कलम में ना, मैं आपका एक डायलॉग सुनाना चाहती हूँ क्योंकि हमने आपकी ज्यादातर बात की है जो हल्के फुल्के डायलॉग से, लेकिन एक डायलॉग सुनते हैं उसके बाद बात करते हैं। जी लेकिन पहले प्रोमो चाह रहे हैं अरसलान, एक सुनाना प्रोमो हम सुन लेते हैं उसके बाद वो डायलॉग सुन।
आवाज है दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, बिजली करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनाएंगे।
प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है,
दुनिया ना उलट जाती है।
सर, मुझे मीडिया के सामने जाने दीजिए सर, मैं अपनी गलती कबूल कर लूंगा।
किस कमीने ने कहा कि तुमने गलती की? गलती तो उसने की, तुमने तो रोका, लेकिन ये मीडिया को नहीं पता चलना चाहिए।
मैंने आपको चीट किया, मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मुझे जाने दीजिए सर।
रुको,
तो फिर मेरी भी कुछ डिमांड्स हैं।
ए, डिमांड्स, डिमांड
क्या है? बता, बता, बता,
क्या है?
ये स्पेशलिटी मैसी रहेगी, इसमें किल बिल हेड होगा। मुझे अमेरिकन वीजा चाहिए।
अमेरिका क्यों जाना? तुम्हें पुलिस की नौकरी देता है।
तुम सब दोगले हो।
मुझे नहीं चाहिए सर।
व्हाई?
मैंने पावर्स को अपने हाथ में लिया, इसीलिए ये सब कर पाया। मेरे भैया की तरह सिंसियर ड्यूटी करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को एक बार फ्रीडम देकर देखिए, रिजल्ट इससे 50 गुना ज्यादा होगा।
तुम मामूली इंसान नहीं हो राजा।
आप भी कौन से मामूली इंसान हो? स्पेशल ऑपरेशन के हेड आप ही दो ना सर।
ओ माय गॉड।
तो हमारे साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनीस बज़मी साहब हैं। अनीस साहब, आपका, क्योंकि थोड़ी सी देर को लाइन कट गई थी, तो आपका ये वो डायलॉग था जब वो कहता है कि जो मैं पुलिस अफसर की जगह मुजरिम बनना चाहूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा आसानी से सिस्टम को तब्दील कर सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके अक्सर कहानी में जगह जगह बहुत संजीदा बातें इस तरह आती हैं कि उन्हें एक आम आदमी समझ सके, और यही एक कहानी लिखने वाले का कमाल है कि भारी भरकम तकरीरें नहीं करवाए, बल्कि एक कैरेक्टर जो कि नेगेटिव है, जब वो ये बात कहता है तो हमें समझ में आती है कि वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत बड़ी अच्छाइयाँ छुपी हुई हैं, और वो भी सिस्टम को तब्दील कर सकता है और शायद ज्यादा कर सकता है। तो आपने जो भी कैरेक्टर्स लिखे, आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है? आबिद बज़मी साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आबिद साहब, मेरा ख्याल है इनको हमारी आवाज़ नहीं आ रही, तो दोबारा से फ़ोन कीजिएगा। समीन, अनीस बज़मी साहब हमारे साथ हैं। जी जी, आ रही है
आपको आवाज़? आ रही है
जी, आ रही है जी।
जी जी जी, तो मैंने आंखें फिल्म लिखी थी, तो उस वक्त हमारी फिल्मों में हीरो के नाम होते थे बड़े भारी भरकम, राहुल ओबरॉय और राज खन्ना, इस तरह के नाम होते थे, और मैंने नाम रखा था बुन्नू और मुन्नू। तो वो दोनों कैरेक्टर भी मुझे बहुत पसंद थे उस फिल्म में। कादर खान साहब जो थे और सदाशिव, वो कैरेक्टर बहुत अच्छे थे। मुझे नो एंट्री में सलमान भाई का कैरेक्टर बहुत पसंद है, और रेडी में जैसे जो हमारे कमांडेंट थे जो प्यार करते हैं हीरोइन से और फिर वो नौकर बन जाते हैं, वो कैरेक्टर बहुत पसंद है। तो ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ थे एक दूसरे से और बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे, तो वो सारे कैरेक्टर्स मुझे बहुत पसंद है।
अच्छा, आपकी कहानियों में बच्चों के किरदार भी आते हैं कहीं कहीं, और जो बड़े अच्छे लगते हैं, तो चलिए एक बच्चे का किरदार तो नहीं है, लेकिन टीचर्स जो उनकी इस्तेदाद है इम्तिहान के बारे में, इस तरह के मैंने कई जगह क्लिप्स देखे, तो ये सुनते हैं।
टीचर हूँ अमर चौधरी।
टीचर? चीटर है तू साले, एग्जाम में जीरो देता है।
तुमने जवाब ही गलत लिखा था।
सवाल क्या था? Who is the President of India?
मिसेज प्रतिभा पाटिल।
तूने बताया था कि अब्दुल कलाम है।
ओ, प्रेसिडेंट चेंज हो गया ना?
अबे तो चेंज हो गया, इसमें मेरी गलती है। सिकंदर ने पोरस से कब और कहां लड़ाई की, इसमें मैं क्या करूं? अबे मुझे क्या वहां जाके उनकी कब्र खोदनी है।
शाबाश शाबाश, सही जा रहा अमर चौधरी। देखा, इसीलिए मैंने इसका नाम अपने नाम पे रखा है, अमर चौधरी।
ए अमर चौधरी।
अच्छा, हमारे ये जो आपके डायलॉग अभी हमने सुने, मैं मोहम्मद आजम सुल्तान ने फेसबुक पे आपके लिखा है, क्या बात है, तो मैं भी कहती हूँ क्या बात है अनीस बज़मी, क्या कहना आपका, एक इंसान की हैसियत से भी, एक फनकार की हैसियत से भी। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलके, आपसे बातें करके। इंशाल्लाह अब आइंदा हफ्ते आपसे दोबारा, आइंदा हफ्ते क्या, इसी हफ्ते जुमेरात को।
नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई, और सारे लोगों का, जिन लोगों ने फोन किए, जिन लोगों ने मैसेज दिए, उन सबका शुक्रिया। मुझे आज बड़ी खुशी हुई है सारे लोगों से बात करो, और आपसे बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया आपका। तो सामीन, हमारे प्रोड्यूसर अरसलान शरीफ थे, मैं शहनाज अजीज आपसे इजाजत चाहूंगी प्रोग्राम खत्म करने की। खुदा हाफिज।
खुदा
लगता है अब ना तेरे बिन रह पाऊंगा रे। जनवरी में
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔